ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का कौन सा तीसवा अध्याय है कौन सा नौ प्रचेताओं के बारे में है ना कौन सा लिखा है कौन सा नौवा तात्पर्य तो है नहीं जा ये अध्याय प्रचेताओं के कार्यकलाप के बारे में है राजा प्राचीन परिषद ने अपने 10 पुत्रों को कहा कि प्रजापति बनो तो प्रजापति बनना आसान नहीं है हर एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति ये देखें बाद में बच्चे पालना मुश्किल है ऐसा महसूस करना इसमें कोई बहादुरी नहीं है बहादुरी तो ये लोग बताते हैं ये 10 प्रचेता का आदेश मिला है प्रजापति का लेकिन पिता को पता नहीं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं आदेश मिलते ही वो तपश्चर्या करने गए हैं प्रजापति बनने से पहले तपश्चर्या आती है इसका आजकल कोई ख्याल में नहीं रखता अपने ध्यान में नहीं रखता प्रजा अनायास ही पैदा हो जाती है वो तो कुदरती है कह के रह जाए लेकिन प्रकृति के 3 नियम कड़े होते हैं इन नियमों से छूटना मुश्किल हो जाता है तो प्रजापति बनने के पीछे जो हेतु है वो बर नहीं आता तो ये चारे हम ये 10 कुमार जो प्रचेता कहलाते हैं प्र यानी पहले से चेता है जिसकी चेतना जागृत हो गई यानी कि प्रजापति बनने वाला कृष्ण भावना भावित होना चाहिए एक लक्षण दूसरा है कृष्ण भावना भावित होते हुए भी जो आवश्यक शक्ति और नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर इत्यादि तो उसका अनुमोदन करना चाहिए ऐसे नहीं कि हम कृष्ण भावना भावित हैं इसलिए बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा नहीं जो जो सुचित प्रवृत्तियां हैं तपश्चर्या यज्ञ इत्यादि की वो तो आवश्यक है, काल के अनुसार आवश्यक है। तो प्रचेता सभी उत्तर की दिशा में वो जा रहे हैं, इनको तपश्चर्या का ही एक लक्ष्य है अभी प्रजापति बनने से पहले। तो बड़े समुद्र जैसा जलाशय पर आ जाते हैं, तो वहाँ वो लोग देखते हैं कि शिव जी अपने साथियों के साथ जलाशय में से आ रहे हैं। शिव जी ने तो पहचान लिया इन लोगों को, लेकिन इस जगह पर जो आने का उन लोगों का जो सारा प्रयोजन है उसके लिए वो भी अवगत हो गए थे, और इतने आनंद में इन लोगों से मिलते हैं। मैं जानता हूं आप लोग कौन हो और यहां क्यों आए हैं, मैं भी यही पद्धति का अनुसरण करके मैं आ रहा हूं जगत के कल्याण के लिए। मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए उनकी प्रशस्ति के एक गीत भी बना दिया, मैं आपको ये सिखाता हूं, आप उस पर ध्यान करके उसका मनन कर, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। तो ये शिव गीता के नाम से जानी जाती है, तो उन लोगों ने सीख लिए, वो भगवान को प्रसन्न कर पाए। प्रजापति बनने से पहले भगवान को प्रसन्न करना होता है, हम तो मान लेते हैं चलो प्रार्थना कर दी इसलिए अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन प्रार्थना पहुंचती है कि वो जानने के लिए भी हमारी फुर्सत नहीं है, तो प्रसन्न होने की तो बात अलग ही है। तो यूं देखे तो भगवान इनके समक्ष उपस्थित है, भगवान का वर्णन आ रहा है, भगवान गरुड़ पर विराजमान है और आठ भुजा वाले होकर आए हैं दर्शन देते, और भगवान ने उन पर प्रसन्न होकर वर मांगने की नाम वर देने की इच्छा बताई बिना मांगे। उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं कि इनकी इच्छाएं सारी और इनके कार्य में सारी सफलता आ जाएगी। सर्वप्रथम ये बताया है कि आप 10 बच्चे अपने आप में संप में रहकर एक दूसरे का मान करके आप हमेशा साथ में रह जाओ, ऐसे ही मित्राचारी आपको खास अभिनंदन देती है। इसलिए आप 10 10 10 को एक ही वरदान देंगे। तो आज का श्लोक है 9वां श्लोक, श्री भगवान वाच से दूसरा श्लोक है। यो अनुस्मरति संध्यायां युष्मानो दिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मस्याम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। यो अनुस्मरति संध्यायां युष्मानमनुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। यो अनुस्मरति संध्यायां युष्मानो दिनं नरः
तस्य भ्रातृस्वात्म साम्यम् तथा भूतेषु सौहृदम्। यह जो अनुस्मृति सदैव स्मरण करता है, संध्यायाम शाम के समय युष्मान तुमको अनुदिनम प्रतिदिन, नरह मनुष्य तस्य भ्रातृषु अपने भाइयों के प्रति, आत्मसाम्यम व्यक्तिगत समानता, तथा और भूतेषु समस्त जीवों के प्रति सौहृदम् मित्रता। भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। दसवां श्लोक है, ये तु माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहितः स्तुन्वन्त्यहं कामवरात् दान्स्ये प्रज्ञां च शोभनाम्। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जो लोग शिव द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 10वें अध्याय और 10वें श्लोक में हुई है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सके। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो राजा प्राचीन परिषद के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है उसका कल्याण और उद्धार होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हैं। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्तियों जैसा लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वो भगवान से सीधे भगवद गीता सुन रहा है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवद गीता सुनना तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का जिसने भगवद गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं रहता। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख यही नहीं जानते हैं कि भगवद गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में उसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवद गीता समझना चाहता है तो वह भगवद गीता के रहस्य को नहीं समझ सकता। भले ही लौकिक दृष्टि में वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का पहला आशीर्वचन के लिए भी सुन लेते हैं। श्री भगवान ने कहा है राजपुत्रों मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी ही एक कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। तुम जो वर चाहे मांग सकते हो। और भगवान ने अपनी इच्छा भी उन पर बता दी कि वर मांगने से पहले मैं तो ये भी आपके अभिवादन के लिए कर रहा हूं कि जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति भी मैत्री भाव रखेंगे और खास करके जो लोग शिवजी द्वारा प्रणित स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ समृद्धि और सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। समृद्धि नहीं सद्बुद्धि है।
सो ये
भक्ति में मित्रता की आवश्यकता बताता है। मित्रता कई प्रकार की होती है, कोई सीधा साधा मित्र होता है, कोई बंधु होता है, कोई सखा होता है। तो ये सब मित्रता की गहराई बताने वाले संबंध है। ये तो 10 प्रचेता है, एक ही पिता के पुत्र हैं, तो बंधु भी हैं, लेकिन बंधुत्व की भावना, सखा यानी कि एक दूसरे को मदद करने की भावना, तभी सखा बन सकता है। सखा अपनी उम्र के बराबर होना चाहिए जिसके साथ मित्रता कर सकते हैं, पर लेकिन साख्य भाव जो है, तो साख्य भाव में समानता उम्र की नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने आत्मा की जो ये प्रवृत्ति है विशुद्ध भक्ति की, वो सरिखाए के बता। तो अवश्य उन लोगों के लिए साख्य भाव, बंधुत्व भाव और मित्र भाव तीनों साथ में बने रहे। जैसे कि गुरु भाई या गुरु बहन, मित्रता, लेकिन गुरु भाई यानी कि एक ही गुरु के जो शिष्य होते हैं, इनको गुरु भाई कहा जाए, दूसरे को नहीं कहा जाए। अंग्रेजी में तो गॉड ब्रदर कहते हैं, गुरु ब्रदर नहीं कहते। वो ठीक संज्ञा, गुरु भाई, लेकिन अंत में गुरु तो एक ही होने चाहिए। कौन गुरु है? तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण है, तो वो तो हो गए गॉड। तो गुरु भाई यानी कि गुरु तत्व में भ्रातृत्व, गुरु तत्व। लोग समझते नहीं, तुमने किससे दीक्षा ली है? ओ महाराज से। ये महाराज हम जानते हैं, लेकिन हमने तो दूसरे महाराज से ली, आने के अंतर पड़ गया। जो सामान्य भक्ति में जुड़ाने वाला एकत्व का भाव हम पहले से ही अलग कर देते हैं, इसमें ना समझ रहे थे। आप भी दीक्षित हो, इस कौन में हो? ओह, तो आप मेरे गुरु भाई हो। मैं तो ये समझ होनी चाहिए कि हम किससे जुड़े हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं या सारी संस्था से जुड़े हैं। तो इस्कॉन को गुरुत्व निभाना होता है, और उसके लिए हमें एक दूसरे को सहयोग देने की आवश्यकता है, तब मित्र। नहीं तो ये लड़ा लड़ी है, कापा कापी है, मारा मारी है। तब भक्ति में हम अपनी व्याख्याएं, अपनी समझदारी अपने प्रति ही सीमित नहीं कर सकते, बल्कि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम्। उदार चरित्र, ये तो व्यक्ति संख्या, क्या हमारा चरित्र उदार है या संकुचित है? अयम निज परो वेत्ति लघु नाम लघु चेतसा, ये मेरा है, ये दूसरे का है। ये लघु चेतना कहलाती, लघु चेतना यानी कि जिसकी चेतना का कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुंबकम्, ऐसा उदार चरित्र बनाना चाहिए जैसे सारी पृथ्वी
एक अपना निजी परिवार बन जाता है। तो प्रभुपाद जी की ये भावना थी, नहीं तो सारे विश्व में भगवान का नाम का फैलाव कैसे कर सकते थे। तो हमें अपनी संकुचितता छोड़नी चाहिए। इसीलिए जब तक जब हम भक्ति की प्रवृत्ति में बने लगते हैं तब प्रचेताओं का उदाहरण हमें सामने रखना पड़ता है। इनका स्मरण करके इन्होंने भक्ति अपने अपने सुचित कर्मों के अनुसार कैसे की। ये तो प्रजापति बनने की बात है, लेकिन प्रजापति में भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ये तो हो गया एक्सीडेंट और प्रजा निकल आई, नहीं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और भगवान के प्रति की जिम्मेदारी है। वहां से चालू होकर वही मार्गदर्शन आपको आदर्श गृहस्थ आश्रम में मिलता रहेगा। सर्वप्रथम भगवान केंद्र में होने चाहिए, और भगवान के ये विशुद्ध भक्त हैं जो गृहस्थ बने हैं, यानी कि पिता ने प्रजापति बनने को कहा है तो आज्ञा तो उठा ली, लेकिन वो जानते हैं कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो ये भाव भगवान को प्रसन्न करने वाला है और भगवान उसका अनुमोदन देते हैं। तो जिस घर में ये भावना से काम होता है तो सारा परिवार एक ही लक्ष्य में आगे बढ़ सकता है। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये समाज के रीति रिवाज इत्यादि इसी लक्ष्य पर चल रहे थे, लेकिन इसमें स्वार्थ वृत्ति हमें अलगवाद पैदा करा देती है। यानी कि हम भगवान की प्रीति नहीं देखना चाहते, उसमें हम अपनी कुंठित बुद्धि से अयम निज परो व्यक्ति करके ये परिवार टूटता है, जुड़ता नहीं। तो जो परिवार टूटता है, चाहे पति पत्नी में अलगाव बन जाता है या उसे आगे माँ बाप को भी दूर होना होता है, तो समझो ये परिवार कभी सुखी नहीं हो पाएगा। यानी कि ये विश्वास का कारण नहीं है, लेकिन अज्ञानता का कारण बन जाता है। हम अपनी अज्ञानता पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र के नियम पर विश्वास नहीं जमता। इसलिए ये कलयुग में ये विषमता आप हर जगह देख सकते हो, संस्थाओं में भी ये विषमता पड़ी है। जो ज्यादा परिवार बड़ा परिवार का स्वरूप लेती है, पर ये विषमता कैसे दूर हो। यदि एक ही लक्ष्य के लिए हम जुड़ते हैं तो जुड़े क्यों नहीं रहते, उसका कोई उपाय है कि नहीं, उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। नहीं तो जैसा बाहर है वैसा अंदर है। इसीलिए ऐसे परिवार जो कलयुग में हमेशा असंतोषी और खटपटी खटपटी यानी पॉलिटिक्स जन जिसको पांच भूतों वाला ही जिसके मन में यानी कि शरीर अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पंच तत्व जो हैं, तो इस पर ही जिसकी बुद्धि बनी रही है उसे प्रपंची कहलाते हैं। प्रपंची प्र पांच पर
पहले से ही जिसकी मति ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाले भौतिकता पर जो पड़ी है तो वो प्रपंची कहलाते हैं। ये प्रपंची कितना भी दावादारी करे लेकिन उसकी कोई सफलता नहीं होगी, बल्कि उसके बारे में कोई सराहना भी नहीं। प्रापंची की दया बुद्धिया हरि वस्तु न संबंधिना मुमुक्षु ही परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु वैरागी बनता है क्योंकि प्रपंची बुद्धि से काम करता है। प्रपंच यानी काफी खटपटी पॉलिटिशियन प्रपंच में ही जुड़ा रहता है। यदि आप प्रपंची न हो तो संस्था में संचालन करने के लिए लायक नहीं, ऐसी व्याख्या हो रही है। बिना प्रपंच आप सफल नहीं हो पाओगे। उसे कहते ये तो रजोगुण वालों का काम है। रजोगुण प्रपंची हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य यदि भगवान केंद्र में नहीं है तो ऐसे प्रपंची राजा तो धरती पर बोझा बना बैठेगा। लेकिन अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपयुञ्जत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। भक्ति में तो यही रूप गोस्वामी ने बताया है, अनासक्तस्य विषयान, विषय वस्तु पर अनासक्त भाव, यानी कि ये होते हुए भी ये मेरी नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। तो विषय यथा अर्हम उपयुञ्जता, सारी वस्तु भगवान की है तो ईशावास्यम सर्वेदम, तो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। हम अपनी सेवा में कैसे लगा सकते हैं? या बंटवारा भी कैसे कर सकते हैं? चल इतना तू तेरी सेवा के लिए, तो इतना मैं मेरी सेवा के लिए, नहीं। यदि बंटवारा ही होता है तो वो थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक ही साथ सारी तो सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भगवान की विशुद्ध भक्ति जो रागानुगा कहलाती है, उसमें बंटवारे की तो बात होती ही नहीं, बल्कि किसी पर त्राटक भी नहीं कर सकते। इनकी सेवा यदि नहीं हो पाती तो मदद करने की भावना, यानी कि हम आगे जाकर योगदान दे सकते हैं। कोई बीमार हो गया, चलो तो तुरंत कोई है, तो ये अनासक्त भाव जब होता है तब ये आपस में एक दूसरे का हम संभाल पाते हैं। तो ये सारी चीजें सीखनी होती हैं और प्रचेताओं के माध्यम से हम काफी सीख सकते हैं, क्योंकि भगवान यदि सराहना करते हैं तो ये इन लोगों के जीने की रीति भी काफी हमें ये उदाहरण के रूप में समझा सकती है। तो इसी तरह प्रचेताओं को आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, स्वीकारना चाहिए और वही आशीर्वाद को हमें कार्यवाही में लगाना चाहिए। नहीं तो भगवान देते थे, हम छुपा के अपने पास रखते हैं, फायदा क्या होगा? आशीर्वाद होते तो सेवा के लिए, कोई निजी लाभ के लिए नहीं होता। आशीष वचन होते हैं, वचन यानी वचन का पालन करना होता है। आशीर्वाद यानी कि वो हमें फल मिल गया, ऐसा नहीं है।
आशीर्वचन को आशीर्वाद कहते हैं, बोलना चाहिए लेकिन बोलने का अर्थ क्या है? आज्ञा, आशीर्वाद में तो आज्ञा होती है। तो आप चार माला करो, 16 माला करो, आपका कल्याण हो जाएगा, आशीर्वचन है। लेकिन यदि चार पर चार ही माला कर लो तो आशीर्वाद कहाँ हो? आशीर्वाद तो हमें एग्जीक्यूट करने के लिए है। लोग समझते हैं आप सिर्फ आशीर्वाद दिया करो, लेकिन इसका मतलब क्या है? यूं छोड़ लेते हैं पांव और देखते हैं कहीं और, तो न तो आशीर्वाद होता है, न तो सुनना चाहते कि क्या आदेश दे रहे हैं। ये आदतें बहुत बुरी हैं, उसमें ना समझपन बहुत है। तो भक्ति के विकास में ये सारी सूचना हमें प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। भक्तों के लिए तो अनासक्त भाव में जो आशीर्वाद मिलते हैं वो अनासक्त जीवन जीने के लिए है। प्रपंचियों को आशीर्वाद नहीं होता, इन लोगों को भौतिक आसक्ति के अनुसार यदि भौतिकता प्राप्त होने पर वो हमें भी आशीर्वाद मिला है, भगवान की कृपा है, लेकिन भौतिकता से छूटते नहीं तो वो आशीर्वाद कैसे कहला सकता है? आप रास्ते में किसी से भी पूछो, अरे भैया कैसे हो, अरे ऊपर वाले की मेहरबानी है, लेकिन पान की पिचकारी मारेगा, ये मेहरबानी है, आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद है, यूं कहेगा, लेकिन करेगा क्या? इंद्रिय तृप्ति के प्रति ये कोई आशीर्वाद होते हैं? इसमें किसने कहा कि क्या आप पान तमाकू इत्यादि खाओ? वो तो वर्ज्य है। तो ऐसे ना समझपन में भक्ति प्रधान नहीं बन सकते, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। हमें ये सारी समझ इसी श्लोकों में से मिलती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित में सतत बने रहना चाहिए। तेषाम सतत युक्ताना, सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति। भगवान वो पर्याप्त बुद्धि, कृष्ण भावना की बुद्धि उसमें बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा ही भगवान की ओर जाने के लिए प्रगति हो सकती है। कृष्ण भावना युक्त बुद्धि से हमें सारे संसार का निरीक्षण करना चाहिए और जो अनुकूल है वो अपनाना चाहिए, प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए। सही, तो भक्ति की प्रगति अवश्य भावी है। तो हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ये आदेशों का पालन करते रहे तो उसमें सारी इच्छा भी सफल हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान को प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। क्योंकि वापस जाना यानी कि वहां से आए होंगे ही, नहीं तो वापसी की बात ही कहां।
ये लोग घर की वापसी कहते हैं, घर वापसी है? लेकिन कौन सा घर है? कोई कुंठित घर है? गारंटी क्या है कि ये घर में माया नहीं है? कौन से घर की वापसी कर रहा है? जहां से आए हैं वहां जाना होता है। वो लोग समझते हैं कि पहले तो सारा भारत हिंदू ही तो था, जब हिंदू होता है तो दूसरे क्यों बन गए इसमें, यानी कि कोई अवश्य मित्रता का अभाव होगा। इसलिए जो कुंठित या शोषित वर्ग होगा तो वो लोग कहीं बाजी पलट दिए, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या कृष्ण भावना का लक्षण होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो अपनी अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करता है, तो उसे यह जानने लगना चाहिए कि सर्वप्रथम अंतिम गंतव्य स्थान क्या है भक्ति करने का। तो कहते हैं गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड है, भगवान के धाम वापस जाओ। तो लोग समझते हैं कि यही धाम बनाओ, यानी कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन धाम बनाना जानते नहीं, भौतिक धाम बनाते रहते। संस्कार के अनुसार भगवान को अपने वो ही भौतिक धाम में भी बनाए रखते हैं, कि लेकिन समाज और उसके प्रति जो सारी कार्यवाही जीवन शैली बननी चाहिए वो बनाते हैं। तो गुरु तत्व वहां काम आता है, वही समझाएगा, वो आगे बढ़ाएगा। और क्योंकि वो संकुचित मन वाला ना हो, और होता ही नहीं और होना ही नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति भेदभाव बिना वसुधैव कुटुंबक की भावना फैला सकता है। प्रभुपाद जी के मन में थी ही नहीं। जब हम देखें ऐतिहासिक पुरावे में भी कि ये मायावादी संप्रदाय इत्यादि जो सिर्फ भारत सीमित ही लोगों को भक्ति या भगवान क्या है जो विशेष ज्ञान है या सारी आत्मानुभूति की जो शैली, तो भारतीयों को ही सिर्फ उपलब्ध हो सकती है, ऐसे मत वाले थे। तो यानी कि कुंठित भाव। जब श्री प्रभुपाद जी ऐसे भाव वाले नहीं थे, अपने गुरु के आदेश के अनुसार गुरु परंपरा से ये भाव सिर्फ सैद्धांतिक रूपे ही हमें पुस्तकों में ही नहीं मिलता, लेकिन अपने आचरण में तो भी आचरना चाहिए प्रायोगिक रूपे। तो प्रायोगिक करके बताया। जब दूसरे सफल नहीं हुए इनके पहले, तो यानी कि भक्ति में जो विकास हम प्रभुपाद जी के उदाहरण द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं वो तो हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुसरण करना चाहिए, पहले बाद में अनुकरण करो। इतनी छोटी सी समय की मर्यादा में प्रभुपाद जी 11 साल की अवधि में सारी कृष्ण भावना के नीति नियम और भक्तों को ट्रेनिंग देकर ये सारी संस्था खड़ी कर गए हैं। ओ प्रभुपाद जो कर सकते हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुंठित मन वाले लोग संस्था के विकास में भी बाधा डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये मिलता है कि सर्वप्रथम गॉड ब्रदरशिप, वी आर ब्रदर्स इन रिलेशनशिप टू गॉड, तो गॉड ब्रदर हो गए। गुरु के संबंध में यदि बोलोगे तो क्योंकि ये मेरा गुरु है तो वही गुरु है, दूसरा गुरु हमारा गुरु नहीं। और चलो शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु है, वहां भी झगड़ा करते हैं, अरे तुम तो शिक्षा, प्रभुपाद जी के दोनों में अंतर नहीं है। और आप सभी के गुरु कहते होंगे कि भाई मेरे गुरु भाई के प्रति आप जैसा मुझे सत्कार आदर इत्यादि करते हो वही इतना आदर आपको उनको करना चाहिए। ये सारे संविधान के रूप में ये बना रखा है, लेकिन प्रायोगिक रूप में कौन ला सकता है? जो अपनी भक्ति का विकास करना चाहता है वही ला सकता है, दूसरे नहीं ला सकते। जो अंतर्मुखी बनते हैं वही अपनी भक्ति का विकास कर सकते हैं, जो बहिर्मुखी दिखावाबाजी करते हैं हाँ वो विकास में बाधा भी डाल सकते हैं। खुद की विकास में तो बाधा होगी, दूसरों के विकास में भी बाधा डाल सकते हैं। इसीलिए भक्ति की संगति में भी हमें किस के साथ संगति अपने विकास करनी है ऐसा हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। उसमें कोई ये नहीं कि इन लोगों को ही आप मानते हैं दूसरों को मानते हैं, नहीं। जैसे जैसे संपर्क में आए वैसे हमें यही उद्देश्य दूसरों के पास शिक्षा ग्रहण करनी होती है, शिक्षा ग्रहण अमल में उतारने के लिए करनी होती है, अपने पास खिसे में रखने के लिए नहीं होती। तो ये असली भ्रातृभाव के लिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? माइक है क्या? नहीं दे दो यार।
हरे कृष्णा जी, आपको बोला दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु है, हमें अंतर नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करते, लेकिन दीक्षा गुरु के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य है, वैसा शिक्षा गुरु के प्रति हम कर नहीं सकते हैं। एक तरह से आस्था में ऐसा सिखाया जाता है या हमने ऐसा परंपरा में देखा कि ज्यादा जो आस्था शिक्षा गुरु के प्रति सम्मान रहता है, लेकिन वो वाले कर्तव्य जो
यानी कि भौतिक भाव अभी तक दूर नहीं हुआ है, आध्यात्मिक भाव से आप दोनों में अंतर नहीं ला सकते, वो क्या वैधानिक ही है या प्रायोगिक भी है? अंतर होना ही नहीं चाहिए। तो हमें ये अंतर मिटाने के लिए हमारी भक्ति की ओर घुटाई करनी चाहिए अच्छी तरह से, सही ना? सामान्य रीति नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, ये चला लेने की बात तो नहीं। भक्ति के विकास में हम जहां जहां आवश्यकता हो वहीं पहुंच सकते हैं। मनुष्य यदि पहले से ही अपनी मर्यादा बांध लेता है तो विकास नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके इतना करना, ये कोई मर्यादा की बात नहीं है। जो जो रागानुगा भक्ति है तो उसमें कोई भी सेवा कहीं भी क्या भी और किसी भी
युथेश्वरी के हस्तक हो जाते। आवश्यकता है, पहुंच गए। हम तो सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी ये सेवा है, बर्तन नहीं साफ कर सकते। ऐसा कहीं लिखा नहीं, कहीं बताया भी, कहीं मंदिरों में हमने ये नियम देखा है कि जो रसोई पकाना चाहता है तो उसको ही बर्तन साफ करना होता है, छोड़ के मत जाए दूसरों के लिए। तो बिना कोई कुंठित मन से सेवा करने का बता रहे हैं। कई भक्त लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार करते हैं तो वो भी भाव ठीक नहीं है। लेकिन शास्त्र में कभी ऐसा नहीं लिखा है। जब भ्रातृ भाव है वो समानता में एक दूसरे को एक दूसरे की सेवा करने का मौका देता है। कभी कभी शास्त्र में ऐसे उदाहरण भी आते हैं, जैसे कि ऋषभदेव के कितने बेटे थे, सो पुत्र थे। जब उसमें सबसे बड़ा भरत मार, ऋषभदेव ने कहा आप सभी भरत की सेवा में लग जाओ, सो ऐसो। तो इसमें कोई गलती नहीं, उत्तराधिकारी होता है उसके हस्तक लग जाना, और भरत वास्तव में उसकी सारे चरित्र की सराहना इत्यादि कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है। कहीं पहुंचे हुए अपने गुरु भाई यानी के शिष्य हैं जो इन दृष्टि से व्यवहार करते हैं कि भैया आप लोग वहां बसे हो, मेरे शिष्य हो, लेकिन मैं नहीं आ सकता, आप मेरे गुरु भाई की सेवा में बने रहो। ये चरित्र उद्दात कहलाता है। जो संकोच मन कोई बहाना नहीं है, उसकी सराहना नहीं करते शास्त्र। जय जगदीश प्रभुपाद की।